from the conference center at Temple
Square. Salt Lake City's Temple Square, my conference center, say ham apko 177th Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ki annual general conference ki priesthood session ko la rahe hai. Is session ko duniya bhar hajaron girjaghar mein bheja ja raha hai. Is session ke liye sangeet Brigham Young University ke combined men's choir dwara diya jayega.
Thomas S.
Monson, जो गिरजे की पहली प्रेसिडेंसी में पहले काउंसलर है, वो आज रात एक के प्रेसिडेंट सेशन कंडक्ट करेंगे.
We welcome you, brethren, to the general.
Hello, I'm Apko Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ki 177th annual general conference ki priesthood session mein swagat karte hain. President Gordon B. Hinckley, jo is conference par preside kar rahe hain, unhone mujhe Brother Monson ko conduct karne ko bola hai. Is sabha ko satellite ke prasaran dwara priesthood ke bhaiyon ke paas duniya bhar पहुंचा जा रहा है. जोतिया बनाकल असेंबली हॉल BYU में मैरियट सेना प्रोवो मिशनरी सेना में इकट्ठा हुए हैं. इस सेशन के लिए संगीत ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी की प्रिस्टिट क्वायर द्वारा रोनाल्ड स्टेहली के निर्देशन द्वारा दिया जा रहा है और जॉन लॉन्गेस्ट ऑर्गन पर है. हम इस प्रिस्टिट सेशन को शुरू करेंगे क्वायर के गाने राइज अप ओ मैन ऑफ गॉड के साथ. प्रार्थना फिर 70 के एल्डर वेन एस पीटरसन द्वारा दी जाएगी.
Our kind and eternal Heavenly Father,
हमारे दयावान और अनंत पिता, हम यहाँ इस शाम इकट्ठा होने के लिए प्रीस्टूड के पुरुषों के रूप में आपको धन्यवाद देते हैं. इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में और दुनिया भर में भी जो इकट्ठा है उनकी तरफ से धन्यवाद देते हैं. और इन आखिरी दिनों में यीशु मसीह के विस्थापित गॉस्पल के धन्यवाद देते हैं. और यीशु मसीह जो आपके बेटे हों उनके जीवन और उनके सीखों के लिए भी धन्यवाद देते हैं. उनके निर्दोष मिसाल के लिए, उनके अनंत बलिदान के लिए और उनके दिव्य पुनर्जीवन के लिए और हम प्रॉफिट और अपोस्टल्स के लिए धन्यवाद देते हैं, पहली प्रेसिडेंट से लिए और कोरम द 12 के लिए, और उनके ऊपर आपका आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे प्यारे प्रॉफिट प्रेसिडेंट होंगली हिंकली के ऊपर उन्हें आशीर्वाद देते रहिए और उन्हें शक्ति देती रहे ताकि वह हमें और गिरजे को प्रेरित नेतृत्व दे सकें। अब हमारे पास हम बारी हैं कि उन व्याख्याओं से सुनेंगे जो इस हम स्वर्गीय पिता उसको बोलते हैं कि हम उन मिशनरीज और मिशन प्रेसिडेंट उनको उनसे मांगते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। और वो जो नवयुवक हैं जो हमें मिलिट्री के अंदर हमारी इससे सहायता कर रहे हैं उन्हें कृपया आशीर्वाद दीजिए। और इस दिन जिस दिन हम रीडेडिकेशन जिसका हम भाग हुए हैं हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे साथ साथ हो ताकि हम अपने आप को अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें प्रीस्टेड वालों के रूप में और फिर ऑर्डिनेंस और कवनेंस को हमारे आपके पास लौटने के लिए एक दिन हम आपकी आत्मा को यहाँ आने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
Thank you, Brother Peterson.
Dhanyabad, Brother Peterson. Choir ab gaega, brightly beams our Father's mercy. Gaane ke baad, quorum of the 12 apostles ke elders, Joseph B. Woodlin aur Robert D. Hales, ham se bolenge. Unke baad, ham Bishop Keith B. McPollen se sunenge, jo presiding bishopric se hai. Singing by the choir.
Lately, I have reflected.
हाल ही मैंने कई अपने बेहतरीन अनुभवों के बारे में सोचा है. मैं स्वर्गीय पिता को अपना आभार दिखाना चाहता हूँ आशीर्वादों और मौकों के लिए जिन्होंने मेरे जीवन के शुरू के सालों में मुझे मदद करी. मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा जीवन बदलने वाला चीज़ तब हुई जब मैं युवक था. उसने मेरा चरित्र को बनाया और मेरा रुझान दिखाया. उसके बिना मैं कहीं और कुछ कोई और आदमी होता. इस शाम उस अनुभवों के बारे में बात करूंगा और उनके सीखी हुई सीखों से. मैं उस हाई स्कूल फुटबॉल गेम को नहीं बोलूंगा. मैं विंग बैक पोजीशन खेल रहा था और मेरा काम था कि मैं लाइन बैकर को ब्लॉक करूं ताकि क्वार्टर बैक बॉल को फेंक नहीं पाए. मैं जानता था कि इतने अच्छे से जानता हूँ कि दूसरी साइड पे जो आदमी था वो बहुत बड़ा था. मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था पर ये दूसरा आदमी जरूर सबसे बड़ा आदमी होगा. उसका वजन हम दोनों के बराबर था और हमारे पास में ऐसी पैडिंग नहीं थी जो लोग आज पहनते हैं. उसके बारे में मैं जितना सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है अगर मैंने उसे कभी भी अपने आप को छूने दिया तो मैं अपनी टीम के लिए खुशी मनाऊंगा एक हॉस्पिटल बेड से. पर मेरे लिए मैं बहुत स्फूर्ति से भागता था और पहले हाफ में मैंने उसको अपने हाथ में लगाने दिया. पर एक प्ले में क्वार्टरबैक ने पास दिया. उसने बॉल को मेरी तरफ फेंका था. दूसरी ये हुए थे कि मेरे पीछे एक मैंने उसका आते हुए सुना और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने अपने बॉल को पकड़ा मैंने कहा कि मैं बॉल को पकड़ा तो मैं एक बिस्तर के ऊपर से खाना खा रहा हूँ हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर. तो पर बॉल मेरी तरफ आ रही थी और टीम मेरे ऊपर निर्भर थे तो इसलिए मैंने बॉल को हाथ बढ़ाया और मैं मुझे याद है कि मेरे बॉल मेरे हाथ में थी और मेरे पीछे था और उसके बाद मैं ढक से ज़मीन पर गिरा. उसके बाद मुझे पता नहीं था मैं किस धरती पर था. एक चीज मुझे वो याद है जब उस एक गहरी आवाज़ ने मुझसे जिसने कहा कि ये तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि तुम गलत टीम पे हो. विकेमली मिकिनली ऑसवर्ल्ड मेरे फुटबॉल कोच थे. वो एक बहुत बढ़िया कोच थे और मेरे जीवन पे काफ़ी उन्होंने प्रभाव लाया. एक दिन उनके हाफ टाइम की स्पीच में कोच वार्जल ने पूरी टीम को याद दिलाया कि उस पास के बारे में जिससे मुझे गिरा दिया था. मैं सुन मुझे उन्होंने कहते हुए देखा कि आप ऐसे कैसे कर सकते थे. वो अपनी अंदरूनी आवाज़ से बात नहीं कर रहे थे. मैं जानना चाहता हूँ कि किस चीज़ की वजह से अपने प्रयास को गिराया. मैंने कहा कि मैंने अपनी आंख पर से अपनी बॉल को हटा लिया. कोच ने मेरी तरफ देखा और कहा वो ठीक है तुमने आंख को बॉल से हटाया पर उसको वापस मत करो. उस तरह की गलती से हम गेम हार जाते हैं. मैं उस पर कोच वार्डल को जानता था और उसके मैं महसूस किया मैंने वो किया जो कोच ने कहा था और मैं कभी भी बॉल पर सराक नहीं उठाऊँगा.
We headed back into the field and started the second half.
वापस फील्ड में गया और दूसरे फील्ड का चालू किया. वो एक पास का गेम था और करीब था और हम चार पॉइंट पीछे थे फोर्थ क्वार्टर में. क्वार्टरबैक ने मेरा मुझे नंबर दिया नेक्स्ट प्ले के ऊपर. मैं वापस गया. मैं बॉल मेरी तरफ आई पर इस टाइम वो जायंट मेरे सामने खड़ा था और वो पार्स इंटरसेप्ट ले कर सकता था. तो जैसे मैं बॉल की तरफ गया तो वो उसकी आंखों में मैंने डाला और वो बॉल मेरे हाथ में आके गिर गया. मैं उस सेलिब्रेशन के बारे में नहीं जानता हूँ. तो पर कोच वॉस्टवॉल के चेहरे के ऊपर उन्होंने कहा अच्छी तरह से तुमने बॉल के ऊपर आँख रखी. मैंने एक हफ्ते तक मुस्कुराए. मैंने कई बड़े आदमी औरतों को जानता हूँ. उनके अलग अलग अनुभव और तरीके हैं और उन्होंने हमेशा मेहनत से काम करी और उन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा मेहनत करी है. हमें अपने लक्ष्य रास्ते घूमना बहुत आसान है.
They're important to me so that I can keep my eye focused on things that really matter. I urge you to examine your life.
मैं आपको कहूंगा कि आप जीवन को जरा देखो. आप देखो कि आप कहाँ हो और आपको किस तरह का व्यक्ति बनने के लिए क्या करना है. अगर आप अच्छे और लक्ष्य को बनाओगे तो आपकी दिमाग को स्फूर्ति मिलेगी और फिर उसके बाद में उन पर आंख उन पर रखो. काम करते रहो ताकि वो आपको मिले. हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, अगर कोई अपनी सपनों के लिए हमेशा मेहनत करते रहे तो एक दिन उन लक्ष्यों को पाएगा जब वो उसको सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा. दूसरे शब्दों में, कभी भी आंख पर बॉल पर मत उठाओ. दूसरे लेसन मैंने ये सीखा कि जब बॉटल आप नीचे हो
and the play called for me to run the ball up the middle to score a go ahead touchdown. I took the hand off and plunged into the line.
Main janta tha ki ek aur game line mein main itna kareeb tha, par main jaise niche jhund ke piche pada hua tha to maine apne thoda aur thodi aur inches nikale aur main dekh sakta tha goal line dusre 2 inches se the. Us samay maine ball ko aage badhaya. Main kuch kasar sakta tha, main hero ban sakta tha, koi bhi nahi janta tha. मैंने इस समय के बारे में सोचा था जब मैं एक छोटा बच्चा था और मैं वहाँ था मेरी पकड़ में, पर मुझे अपने माँ के शब्द याद आ गए. माँ के शब्द याद आए. जोसेफ, उन्होंने कहा था, जो वो करो वो सही है, चाहे उसकी वजह से जो भी करो, और उसके बाद में सब चीज़ें ठीक होंगे. मैं टचडाउन करना चाहता था, दूसरों की आंखों में हीरो बनना चाहता था, पर मैं अपनी माँ की आंखों में भी हीरो बनना चाहता था. मैंने बॉल को वहीं छोड़ दिया, गोल लाइन से 2 इंच दूर. मैं उससे मैं नहीं जानता था, पर वो मेरे जीवन में रास्ता बदलने वाला अनुभव हुआ. जैसे अगर मैंने बॉल का हलाता होता तो मुझे थोड़े समय के लिए मुझे दोस्त से मिलती, पर उसका जो मेरे जीवन के ऊपर एक वो स्कार रह जाती जो मेरे जीवन भर होता. मुझे पता था कि मुझे वो करना है, वो सही है. मसीह की रोशनी हमें सही गलत में से पहचानने में मदद करती है. मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि जब भी मुझे प्रलोभन आए तो मैं फट से ना कह दूं. मैं उसी राय को आपको देता हूं. एक और जब मेरे पिता एक बिशप थे, उन्होंने मेरे वैगन को लोड करने किया और उन फैमिली को देने के लिए दिया जब जरूरत में थी. 75 साल पहले विलियम एफ परशान ने 4th ward और पायनी स्टेक सॉल्ट लेक के बिशप थे. वो एक जर्मन इमिग्रेंट थे, गिरजे में कॉन्वर्ट थे और उनका एक बहुत थिक एक्सेंट था. वो एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, पर उन्हें जिससे सबसे ज़्यादा दूसरों से अलग बताया वो दूसरे के लिए उनकी दया थी. प्रीस्ट की मैंने ब्रे परशान ने एरिक पोस्ट्रिस को ये बोलने को कहा, प्रीस्ट का मतलब सेवा है. प्रीस्ट को क्या मतलब है, मैं सेवा करूँगा. वो सिर्फ एक कहने की चीज नहीं थी. जब विधवाओं को जरूरत थी तो बिशप प्रशांत वहां थे. जब चैपल को बनाया जा रहा था, एरोनिक प्रिस्टन वहां थे. शुगर बीट्स और पटेटोज वेलफेयर फार्म पे जरूरत थी, उनकी बिशप प्रशांत और एरोनिक प्रिस्टन वहां पे भी थे. बाद में विलियम प्रशांत ने स्टेक प्रेसिडेंट में सेवा करी है, जहां उन्होंने एक थॉमस मानसो के एक युवा बिशप को प्रभाव डाया. उसके बाद 1915 में बिशप प्रशांत को स्विस ऑस्ट्रियन मिशन बुलाया गया. بشپ پرشان کو تم اس کے بارے میں تم نہیں سوچ سکتے جب تک تو دوسروں کے بارے میں ان کے دیا کے بارے میں نہیں سوچا. ایرانک پرسٹر اوپر جس کے وہ بشپ تھے 29 وہاں جا کے خود اب بشپ بن گئے. 10 ٹیک پریسیڈنسیز میں گئے, 5 مشن پریسیڈنٹ بنے, 3 نے ٹیمپل پریسیڈنٹ کے کال کو اپنایا اور 2 جنرل اتھارٹیز بنے. وہ ایک بڑے لیڈر نیتا کا شکتی ہے, وہ سیوا کی شکتی ہے. میں اس سمے سے نہیں سمجھ پاتا تھا پر ان سکھوں کو میں اب سمجھتا ہوں جو میں نے ایک یوک کے روپ میں سوچے تھے. اس وہ میرے جیون کی نیو بنی ہے. ہم سب کے پاس میں آتمی کو پا رہے ہیں, کچھ کو وشواس کا ملتا ہے, کسی کو ٹھیک کرنے کا ملتا ہے. میرے قصے میں سب سے بڑی آتمی کو پار جو مجھے ملا وہ مجھے ایک آگے کاری آتما کو پہاڑ ملا. جب میں نے ماتا پتا گرجا کے نیتاؤں سے سنا میں نے اسے اپنے جیون میں اپنانے کی کوشش کری. بھائیوں میں کہتا ہوں کو آگیا پالن کرو. سیویئر نے سکھایا ہے ہو سر دی سینگز آف مائن اینڈ ڈڈ آئی ول لائک ہیم ٹو اے وائز مین اینڈ ایوری ون ہیئر دیز تھنگز آف مائن شل ناٹ بی لائک ناٹ ٹو اے فولش مین. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم گیانی ہیں یا گدھے جیسے کام کر رہے ہیں اگر ہم رائے کو سنیں اور آگیا پالن کریں. اگر ہم پروفیٹ کی بات کو نہیں سنیں ان کے شبدوں کو نہیں سنیں اس کا کیا مطلب, انوبھو کا مطلب کیا ہے, پھر اسکرپچروں کا مطلب کیا ہے اگر ہم ان کو ہم جیون میں نہیں لگائیں. پریزیڈنٹ ہنکلی نے وعدہ کیا ہے کہ سورگیر پتا ان آشیرواندوں کو ہمارے جیل میں دے گا جو اس کے نیموں کا پالن کرتے ہیں. اس میں میں اپنی آواز کو جوڑتا ہوں, میں بیان دیتا ہوں کہ یسوع مسیح ہے منشیہ تک مسیحا. میں بیان دیتا ہوں کہ بھگوان اس کے ان کے پاس میں ہے, وہ ہمارے بات میں دھیان رکھتا ہے, پیار کرتا ہے. پروفیٹ سیئرز ریولیٹرز اس گرجو جو ریسٹورڈ گرجا ہے یسوع مسیح کا اسے نردیشن دیتے ہیں. پریسیڈنٹ کمپلیٹ لیٹری پروفیٹ ہیں اس گرجے کے دنیا کے لیے. میں اپنے بنانے والنے کے لیے اس سندر جیون کے لیے دھنیواد دیتا ہوں جہاں ہر کسی کے پاس میں سیکھنے کے لیے کئی موقع ہیں. میرے پائے بھائیوں کیا ہم وہ لکشیہ رکھیں جس سے ہم انہیں پا سکیں اور کر سکیں جو صحیح ہے اور ان کی مدد کر سکیں پیار سے جو ہمارے پاس میں ہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
Thank you, Joseph. We love you.
What a joy it is to be in the presence. یہ کتنے بڑے آنند کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. بھائیوں جو آپ دنیا بھر میں کٹا ہوئے ہیں مجھے ہیم کے شبد یاد آتے ہیں. Behold, a royal army with the banner, sword and shield is marching forth to conquer on life's great battlefield. تم بھگوان کی وہ شاہی سینا ہوں. آج میں ان کے اس سینا کے سب سے جو سب سے چھوٹے ہیں آئرن پیسٹر ٹیچرز ٹیکرز پیئرز ان کے ان سے بات کرنا چاہوں گا. تمہیں یاد نہیں ہو پر تم اس سینا میں بھرتی ہوئے جو تم نے پری مورٹل میں جیون میں کیا تھا. سور کے اندر گرینڈ کاؤنسل میں تم نے سورگی پتا کی اچھا کو مانا اور ان کے بیٹے یسوع مسیح کا. یاد رکھو تم بھگوان کے بیٹے ہو جس نے مسیح کو پالن کرنے کو چنا. اس سے دیویہ نرنے کے وجہ سے تمہارا انتر پرگتی نربھر ہوتی ہے اور تم ایک شاریرک روپ کو پاتے ہو تاکہ تم اچھے اور بروں میں سے چنا کر سکو اور بڑھ سکو اور تیار کر سکو مسیح کے طرح بننے کے لیے. تمہیں بیپٹائز کیا گیا ہے اور تم نے پوتر آتما کو پایا گیا ہے. تم یہ جان رہے ہیں کہ تم کون ہو, یہاں کیوں ہو اور کہاں جا رہے ہو. اب تمہارے پاس میں ایرونک پیسٹر ہے. Aaronic priesthood तैयार करने वाला priesthood है. जैसे तुम इस priesthood को चलाओगे, उस तरह से तुम्हें जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में मदद करेगा. उनमें से एक है मेलकिज़ेदेक priesthood को पाने का, टेंपल में जाने का, मिशन में सेवा करने की, पढ़ाई पाने की, एक कामकाज ढूंढने का और एक साथी पाने का, ताकि तुम समय और अनंतता के लिए टेंपल में सील हो जाओ. ये एक समय है हमारे सब निर्णयों के लिए. ये ध्यान रखो कि सारे निर्णयों को सही समय और में करो. ये सब निर्णय तुम्हारे 20वें साल की उम्र में 20s में होगा, जो तुम्हारे निर्णय करने का डेकेड है. जब मैं जेट फाइटर पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने कई बड़े निर्णय करने पड़ते थे. तो मैंने प्रैक्टिस किया कि मैं एयरप्लेन में से कैसे कूदूंगी अगर फायर वार्निंग लाइट चालू हो गई. मुझे एक दोस्त याद है से उन्होंने जिसने ये तैयारी नहीं करी. उसने सिर्फ एक सिमिलर ट्रेनिंग से एक रास्ता ढूंढ लिया और उसके बाद में वह गोल्फ खेलने जाता था या स्विमिंग करने जाता था. उसने कभी भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स को नहीं सीखा. कुछ महीने बाद उसके प्लेन के अंदर आग लग गई और वो जाने लगा ज़मीन के ऊपर. जो उसका दूसरा वाला कंपेनियन था प्लेन के अंदर, जानता था कि उसे प्लेन में से बाहर निकलना है और पैराशूट से. पर मेरे दोस्त जिसने ये निर्णय करने के लिए तैयारी नहीं करी थी, उस प्लेन क्रैश में मारा गया. ये डेकेड जो तुम्हारा आ गया है, उसमें तैयारी के लिए तुम्हारा काम कम होगा. ईरानी पिस्टल के रूप में तुम्हें अब तैयारी करना है, ताकि तुम महत्वपूर्ण निर्णय कर सको. तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे, जब हर निर्णय तुम्हें सामने आएगा. ये ध्यान रखो, अगर तुम कोई भी निर्णय नहीं लोगे तो वो उसकी तरह होगा, गलत निर्णय करने की तरह. कई निर्णय तो जो तुम करते हो, उसके अनंत नतीजे होंगे. ये यीशु मसीह के चेले बनने का समय है और उनके निमंत्रण को लेने का है, जिसका है कम फॉल में. इस जीवन में हर दिन हमें मसीह का नाम अपने ऊपर लेना है, उनके बलिदान को याद रखना है और उनके नियमों का पालन करना है. हमने ऐसा किया था जब मैं बैप्टाइज किया गया था, और हमें ये कवनेंट को हर हफ्ते रिन्यू करने का मौका आता है जब हम सैक्रमेंट को लेते हैं. ये समय है कि तुम अपने आप को पवित्र आत्मा को अपने साथी के रूप में पाने के लिए तैयार करें. उसका मतलब अपने माता पिता लीडरों को सुनो, ताकि स्क्रिप्चर को पढ़ो, सुबह शाम प्रार्थना करो, साफ सुथरे रहो, लक्ष्यों को रखो और उनको पाओ, ईमानदार रहो, अपने काम को करो और प्रीस्टूड के लिए ईमानदारी से काम करो. फॉर द स्ट्रेंथ यू के स्टैंडर्डों के अनुसार रहो. ये समय है कि तुम्हें ये निर्णय करना है कि कौन तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं और एक अच्छे अनंत साथी बनने के लिए तुम्हें क्या करना है. जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, एक तरह एक बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलत रास्ते पर डाल सकते हैं. अच्छे दोस्त गॉस्पल को जीने में आसान करते हैं. वो कभी भी उनके रास्तों और भगवान के रास्ते में चुनने के लिए मजबूरी नहीं करते. हमें उस तरह का आदमी बनना है जो अच्छे साथी को, हमारे साथी हमें मदद दे अनंतता के लिए. अगर तुम्हें उन दोस्तों की जरूरत है, तो तुम्हें पूछना है, क्या मैं उन दूसरे लोगों के लिए ऐसा दोस्त हूँ? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो मुझे अनंत साथी के मैं चाहता हूँ। तुम्हें मिशन के लिए तैयारी करना है, ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज्यादा टेंपल पर जाना या मिशन एक अनुभव है और निर्णय है जिससे आप टेंपल कम्युनियन को रह सकते हो। कॉन्सेक्रेशन करके अपना समय देके, उपहारों को देके और उनकी पूरे दिल दिमाग को शक्ति से सेवा करके। मैंने हमेशा ये सोचा है कि 2 साल तो तुम सेवा करोगे, वो समय का एक टाइड होगा तुम्हारे जीवन के 20 साल का। अगर तुम फुल टाइम मिशन कर पाओ तो एक दिन आने वाले समय में तैयारी कर सको। जब समय ठीक हो तो टेंपल में जाओ और पवित्र कवेनेंट्स करो ताकि तुम अनंत आशीर्वादों को पा सको। आप पढ़ाई और काम के लिए तैयारी करने का समय है। आरानिक प्रिस्ट के रूप में तुम जीवन के इंटर्नशिप में हो। अगर तुम स्कूल में मेहनत करोगे तो तुम प्रेसिडेंट हिंकली की राय को आने वाले समय में रख सकोगे। स्कूल और घर में सबसे ज्यादा काम अभी करो, उसके बाद में जब तुम्हारे सामने मौके आएंगे तो तुम दरवाजे खोलने के लिए तैयार रहोगे और उनके उनसे लाभ पाने के लिए भी। हमें ध्यान रखना है, हर आदमी को एक उपहार दिया जा सकता है। अपने उपहारों को बढ़ाओ। नवयुवक उन क्लासों को ढूंढो जिससे तुम्हें आने वाले समय में और जिम्मेदारी और मौके मिलेंगे। ये अब आज्ञा पालन का समय है। प्री मॉडल एग्जिस्टेंस में आज्ञा पालन हमारे ऊपर नहीं था। हमने कभी भी अनंत प्लान के भागों को नहीं चुना, हमने पूरे प्लान को चुना। मैंने वो लेसन पायलट ट्रेनिंग में सीखा। हमें कहा गया कि तुम्हें रात के समय एक्रोबैटिक पैटर्न्स नहीं करना है जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। कुछ एक बार जैसे एक अच्छे पायलट अच्छे दोस्त ने उस आदेश को नहीं सुना। उसने वो गलती करी और रात में जाकर वो टेक्सास में उसने एक्रोबैटिक पैटर्न करे। वो सोच रहा कि वो सच में उस सितारों को देख रहा था, पर वो ऑयल रिग्स को देख रहा था। जैसे वो नीचे गया आसमान के ऊपर, वो सच में धरती के नीचे गया और ऑयल फील्ड के नीचे उसके नीचे था। जब भी तुम एक एयरप्लेन को चला रहे हो, अगर तुम अपनी जगहों को 1 डिग्री बदलो तो तुम्हारा अंदरूनी कान नहीं समझ सकता है। भाइयों, जब भी हमें आज्ञा पालन करते हैं तो हमें अपनी जगहों को भगवान के अनुसार बदलना रहता है, थोड़ा 1-1 डिग्री करके। क्योंकि जब भी शैतान हमारे ऊपर काम करता रहता है तो हम उसे देख नहीं सकते हैं। हमको लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, पर हम सच में मुसीबत की ओर जा रहे हैं। इस जीवन के पहले हमारा जो निर्णय था भगवान को पालन करने का था, वो सबसे बड़ा था, और उससे हम स्वर्गीय पिता के हिस्से वापस जाएंगे। अब समय है समय को ढंग से इस्तेमाल करने का है, ताकि वो तैयारी भगवान से तैयारी कर मिलने की तैयारी कर सकें। मैं बयान देता हूँ कि इस धरती पे बराबर समय होगा अगर तुम उसे ढंग से अपने युवावस्था में इस्तेमाल करोगे। और रिमेंबर माय सन, लर्न विजडम इन द यूथ, यू लर्न इन द यूथ टू कीप द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। अब अपने जन्म अधिकार को सुरक्षा करने का समय है। प्रॉफिट जेकब को दोनों बच्चों को फादर की एक ब्लेसिंग दी। रूबन पहला था तो उसे जन्म अधिकार को खास आशीर्वाद उसके मिला। उसके पिता ने कहा, अनस्टेबल एज वाटर दाउ शैल नॉट एक्सेल, ये सोचो कि अनस्टेबल एज वाटर का मतलब क्या होता है। जब पानी गर्म होता है तो वह एवेपोरेट होता है, जब वो ठंडा होता है तो वो फ्रीज हो जाता है, और जब उसको पकड़ना जाता है तो उसकी वजह से इरोजन होता है और उसके हाथ रास्ते में जो भी आता है वो मिट जाता है। एरोनिक प्रीस्टर के होने के रूप से तुम्हारे पास भी जन्म अधिकार है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम आज्ञा पालन कर शक्तिशाली बनो और गॉस्पल को जीते लिए बिल्कुल पक्के रहो। कोई भी जानता नहीं है कि हमारे लिए क्या आशीर्वाद है, पर हमें अपने अनंत जीवन को इस दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं खोना है। हमें आज्ञा पालन करना है और रक्षा करना है उसका, ताकि हम अपने दिव्य जन्म अधिकार को पा सकें। नवयुवकों, तुम भगवान की सेना में शक्तिशाली भाग हो। Whatever you shall sow, she shall reap. तुम अपने आगे वाले समय को अगर देते, मैं ये तुम्हें निमंत्रण देता हूँ उन निर्णयों को जो आने वाले समय में तुम्हें मदद करेंगे। जो फसल को काटने का जो नियम है उसके अनुसार जब तुम बीजों को बोओगे तो तुम उन निर्णयों के करो जिससे तुम्हें पवित्र आत्मा से तुम्हें निर्देशन मिलेगा। उसके बाद में वो बीज करेंगे, उनको समय भी लगता है बड़ा होने में। प्रेरणा की रोशनी फिर उस आत्मिक हार्वेस्ट को लाएगी जिससे हम स्वर्गीय पिता को प्रार्थना में मानते हैं अगर हमें सही निर्णय करना है। जैसे हम उस रोशनी को पालन करते हैं, हमारे जीवन में से अंधकार निकल जाएगा। लाइट विल ग्रो ब्राइट एंड ब्राइट अंटिल द परफेक्ट डे, और उस दिन हम स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में होंगे। उस दिन फिर हम वहाँ उनके सामने होंगे। हम सबके पास में काउंसिल में प्लान ऑफ हैप्पीनेस को चुनाव करने का मौका था। जब तुम कभी अपने परिवार, बिशप या एम्प्लॉयर से कमिटमेंट करते हो तो उसे पूरा करो। प्रीस्टहुड असाइनमेंट को करते हो वहाँ हमेशा हो, या ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम करते हो तो उसे पूरा करो। जब तुम एक मिशन करना चाहते हो तो उसे करो। जब एक नव युवती तुम्हारे साथ में शादी करती है होली टेंपल के रूप में तो वहाँ ऐसे करो, और एक विटनेस के रूप में नहीं। जब तुम्हारे परिवार सेलेशियल किंगडम में है तो वहाँ हो। जब मसीह तुम्हारा इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन से अपने गले लगाए, और तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अपने गले से हाथ लगाए तो वहाँ तुम हो। ये तैयारी करने का डेकेड है तो वहाँ हो। हमें उन कामों के लिए वो लायक रहना है ताकि वो हमें आशीर्वाद मिल सके इस अनंतता में, ताकि हम उन्हें। मैं बयान देता हूँ कि इस वगैरह पर जानते हैं कि तुम यहाँ आज हो। तुम उनके बड़ी सेना के भाग हो जिसमें अच्छे, शक्तिशाली और बहादुर लोग हैं जो अपने कमांडर का रास्ता पाएंगे और गाएंगे विजय विजय। उनके द्वारा हमें विजय मिलेगी, यीशु मसीह के द्वारा। हमारे भगवान वो यहाँ हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ हों। वो हमें नेतृत्व देते हैं और हमारी विजय उनके उनमें है। ऐसा मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
My dear brethren,
मेरे प्यारे भाइयों, हमें पहली प्रेसिडेंसी और 12 अपोस्टल के साथ इकट्ठा होने का आशीर्वाद पाते हैं। हर प्रीस्टहुड का आदमी, चाहे वो 12 या 112 हो, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय जीवन को पा सकता है। वो बेहतरीन जीवन है, और मैं जानता हूं कि वो सत्य है. तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हाथ में है. यह सोचते हुए शायद हम इस कहानी से मदद पा सकते हैं. एक नवयुवक जो सफलता चाहता था, वो एक अच्छे कॉलेज में भर्ती हुआ. वो उस समय एक एरोनिक प्रीस्टहुड में प्रीस्ट था. उसके लक्ष्य बड़े थे. वो डॉक्टर बनना चाहता था और वो अमीर बनना चाहता था. वो फुटबॉल खेलना चाहता था, तो उसने कोच से मिलकर टीम को ज्वाइन किया. आज हम उसे वॉक ऑन कहेंगे. अब वो कॉलेज के खेलों को दुनिया में अपने को बड़ा बता सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया. उससे उसको लक्ष्य पूरा नहीं होंगे. उसने तैयारी, उपस्थिति और पढ़ाई को भूला था. और एक केमिस्ट्री क्लास को भी उसका नतीजा काफी स्फूर्ति से हुआ. उसे 90 दिन से कम लगे. जिस दिन वो अपने 5 फुट 8 इंच और 170 पाउंड के शरीर के साथ सामने की टीम के सामने खड़ा हुआ, उसने जाना कि वो गलत खेल में था. पढ़ाई करने की आदत नहीं होने की वजह से वह थोड़ी ही पढ़ाई कर पाया. उसकी हार केमिस्ट्री की फाइनल एग्जाम हुई. मल्टीपल चॉइस में उसका बिना सोचे आंसरों ने उसे फेल कराया. कॉलेज और उसको दोनों को पता नहीं था कि उसके साथ क्या करा जाए. पर आज भी मुझे उस केमिस्ट्री क्लास के बारे में बुरे सपने आते हैं. किस्मत से भगवान ने हमें गलती से बचाने का रास्ता बताया है. उन्होंने कहा, Hearken, O ye people of my church, hearken ye people from afar, and ye that are upon the islands of the sea, listen together. Prepare ye for which is to come, for the Lord is nigh. मसीहा के दूसरी बार आने का डॉक्ट्रिन मुझे तैयारी करने और सही से जीने को बताता है. स्वर्गीय पिता जानते हैं कि वादा किया उपहार उसके बच्चों को अच्छा काम करने देते हैं और पाप को डंडों से दूर रहने देते हैं. हमारे भगवान की दूसरी बार आने के ऐसे रेवलेशन हैं. ये रेवलेशन से धरती और स्वर्ग में चिन्हों के बारे में बोलते हैं. वो मुसीबतों बड़े समय को बताते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम इन स्वर्गीय वादों को पाते हैं. The Lord shall have power over His saints and shall reign in their midst. Through my providence, notwithstanding the tribulation which shall stand descend upon you, the church may stand independent above all other creatures beneath the celestial world. Or, priesthood वालों को इन वादों ने अपने और परिवार को भगवान के आने की तैयारी करने को कहा है.
Let us instead be filled with gratitude for our understanding of what lies ahead. Let us appreciate.
हमें समझना है कि हमें अपनी दुनिया के लिए जिम्मेदार भगवान के एक सेवक के रूप में सफलता के लिए रास्ता सीधा है. विश्वासी रहो और जीवन को सरल रखो. बचत करते रहो. विश्वासी रहो. प्रीस्टहुड के पुरुषों के रूप में एक दया पर स्पर्श और शब्द को इस्तेमाल करना है. हम वो आदमी हैं जो प्रार्थना करते हैं, सबत को पवित्र रखते हैं और भगवान के शब्द को जानते हैं, टाइट देते हैं, उपवास करते हैं और बड़ी फास्ट ऑफरिंग देते हैं और भगवान के राज्य को बनाते कवनेंट को रखते हैं और भाइयों हम इकट्ठा करते रहते हैं. ऐसा करने से अपने जीवन को सरल रखो. भगवान के आदमियों के रूप में हम जातियों से दूर हैं, क्योंकि इफ डीलिंग्स और इन्वॉल्वमेंट्स तो हमें अपने जीवन को सरल बनाना है. अगर हमारे पास कर्जे हैं, वो हमें उन्हें भर देने हैं और भाइयों हमें इकट्ठा करते रहना है।
Church and its people will stand independent. Lay up in store.
इकट्ठा करते रहो। पत्नियां इस काम में जरूरी हैं, पर पतियों को परिवार की तैयारी में नेतृत्व करना है। बच्चों को भी माँ बाप की जरूरत है जो उन्हें ये सिखाएं। इस प्रकार वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। गॉस्पल का एक बड़ा नियम है कि हम कमी के दिनों के लिए तैयारी करें। काम और बचत जीवन का भाग है। इस दुनिया में विश्वासी आदमी हमें पॉल के शब्दों को याद रखना है। हमारे सामने तीन प्रेजाइडिंग हाई प्रीस्ट हैं जो गिरजे की पहली प्रेसिडेंसी हैं। दूसरे काउंसलर प्रेसिडेंट जेम्स ई फॉस से हम सुनते हैं, हर माँ और बाप घर से स्टोर कीपर हैं। उन्हें वो बचा के रखना है जिसे उनका परिवार एक आपातकालीन स्थिति में चाहेगा, और भगवान उनकी मदद करेंगे। और प्रेसिडेंट थॉमस मॉनसन फर्स्ट काउंसलर से हम सुनते हैं, कई और लोग अपने जीवन में पैसे की दिक्कत को पार कर सकते हैं अगर उनके पास एक साल का खाना और कुछ भी उधारी नहीं हो। कई लोग से कई उल्टा अमल करते हैं, उनके पास एक साल का कर्जा है और खाना कोई भी नहीं। प्रेसिडेंट गॉर्डी बी हिंकली जो भगवान के प्रॉफिट हैं, उनसे हम सुनते हैं, खाना इकट्ठा करने के सबसे बढ़िया जगह है हमारे घर में। हम इसे धीरे से शुरू कर सकते हैं। हम एक हफ्ते के खाने के से शुरू कर एक महीने और फिर तीन महीने तक उसे बढ़ा सकते हैं। मैं सोचता हूं कि कई लोग महसूस करते हैं कि लंबे लंबे समय के लिए इकट्ठा खाना उनकी पकड़ से बाहर है। एक छोटा रूप से शुरू करो और फिर धीरे से लक्ष्य को पाओ। प्रेरित तैयारी यीशु मसीह के उपहार विश्वास आज्ञा पालन से आती है। सदस्यों को ज्यादा और जोर से नहीं चालू रखना है, पर धीरे से प्रीस्टूड के पुरुषों को इतना इकट्ठा कर रखना है कि वो जीवन की मुसीबतों को सामना कर सकें। कृपया ऑल इज सेफली गैदर्ड इन को अपनी नजर में लोगों को दो। उन्हें बोले कि उन्हें गरीबे के दिनों के लिए तैयारी करनी है। प्रीस्टूड के नेताओं रिलीफ सोसाइटी को परिवार की तैयारी और होम कमिंग में जुड़ाव। गिरजे की औरतों को आपकी सहायता चाहती हैं और आपके नेतृत्व पर अमल करेंगी। गिरजा के हर एक ऑक्सिलरी अपने सदस्यों में विश्वास और बचत को बढ़ा सकती हैं। इस तरह जल्द उसके पास कुछ महीने का काफी होगा। धीरे धीरे या छोटे काम बड़े में बढ़ेंगे जब ये अनाज के भंडार उन्हें जीवित रखेंगे अगर उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे हम पूरी कोशिश करते हैं, हम विश्वास करना है, नाइदर शल्द क्रूस ऑफ ऑयल फेल। हमें ज्यादा ज्ञान, सुरक्षा और दिमाग की शांति मिलेगी। हमें तैयार रहना है, क्योंकि अगर हम तैयार हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। अंत में आपको लूका और पैट्रिजिया वकार्नो के परिवार से मिलाऊंगा। वो रोम के इटली के पास एक छोटे गांव में रहते हैं। एक हाल की पत्र में उन्होंने लिखा, कई बार हमें खाने के आदतों को थोड़ा बदलना पड़ता है। हम उसे वहां रखते हैं जहां वो खराब नहीं हो। हमें उसे समय बदलना पड़ता है और उस समय हमें उसे इस्तेमाल करते हैं। और भगवान के दूसरी बार आने से डरने के बजाय उसे एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। हम उसमें खुशी पाते हैं और यीशु मसीह के विस्थापित गॉस्पल और प्रॉफिट में भी वो हमें अंत विश्वासी रहने की प्रेरणा देता है। ब्रदर विकार्नो लिखते हैं, मेरी अंग्रेजी के लिए मुझे माफ़ कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए जो मैं चाहता था। ब्रदर और सिस्टर विकार्नो हमें समझाते हैं, क्योंकि ऐसा स्क्रिप्चर में लिखा है, भगवान में पूरे दिल से विश्वास करो और अपनी समझ पर मत निर्भर रखो, सभी तरह से भगवान को मानो और वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Thank you, brethren.
Dhanyabad, Brahmyo. Choir, congregation, आप गाएंगे now, let us rejoice. President James E. Faust, जो पहली presidency के दूसरे counselor है, वो हमसे बोलेंगे. उनके बाद मैंने आपसे बोलने के मौका आएगा. Choir.
Brethren, tonight,
आज रात मैं तुमसे अपने नाती पोतों के तरह बात करना चाहता हूँ. मुझे आशा है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो सभी जगहों के सभी जवान पुरोहितों अधिकारियों पर लागू होगा. जब मैं सोचता हूँ बड़ी सभा के बारे में तो कई हजारों के बारे में द्वारा हमसे जुड़ा हुआ है. जल्दी से पुरोहितों महान पुरोहित रखना
relatively few considering the billions of people in the world. To hold the priesthood is
तो रखना है विशेष सम्मान है. फिर भी गिरजाघर के किसी योग्य पुरुष या लगा जिसे उम्र भर वर्ष से अधिक पुरोहित की अधिकार है पुरुष को दिया जाता है ईश्वर के नाम से. वो ऐसी शक्ति है जिससे कोई अपनी आज्ञाओं से अपने ऊपर नहीं ले सकता है. जैसे पॉल ने कहा, कोई पुरुष ने सम्मान को खुद नहीं लेता, पर जैसे ईश्वर नियुक्त करता है, जैसे एरोन थे. ये वो अधिकार है जिससे मानव शक्ति उपद्रव नहीं कर सकती. पीटा एक जवान पुरुष थी जिसने अनुभव लिखा, जिसने उसे सिखलाया कि पुरोहित शक्ति व्यक्ति है. एक नया कॉन्वेंट जो ओंटेरियो कनाडा के उसके वार्ड में उसकी पुरोहित की गई एरोनिक पुरोहित में एक शिक्षा रूप में और पीटा से कहा गया कि ईश्वरीय वचन और भाषकता है. पीटा ने लिखा, मैंने पहले कभी किसी से नहीं किया, पर फिर पवित्र आत्मा ने मुझे आश्वासन दिया कि वो करना मेरे लिए ठीक है. जिस जीवन पुरुष को नियुक्त करने था वो किसी पर बैठा था और मैं सीधे उसके पीछे खड़ा था. हमारे जवान पुरुषों के आदेश मुझे मार्गदर्शन प्रार्थना द्वारा माना ने उसके नियुक्त के संपत्ति करने के बाद उसने कहा, और हमारी इच्छा है कि समय तुम्हारे सिर पर आशीर खुशती करने की जवान पुरुषों की मेरे दिखाना शक्ति की मुझे खुद. उस समय पुरोहित ने मेरे लिए पूरा अर्थ बदल दिया. वो सिर्फ एक बढ़वी नहीं थी, पर ईश्वर के नाम से कार्य करने का वास्तविक अधिकार, और मैं वो अधिकार किसी और को दे रहा था. मैं रुक गया और इंतजार किया कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ कहे कि मुझसे क्या कहना है. उस दिन आशीर्वाद के समय उस भावनाओं के वर्णन करना मेरे लिए कठिन था, पर मैं कह सकता हूं कि अब मेरे पास मजबूत गवाही है कि पुरोहित की शक्ति वैश्विक है. तुम जवान पुरुष निश्चित रहे कि तुम ऊंचे या मलकेजडिक पुरोहित प्राप्त करने के लिए इस प्रोफेसर जोसेफ स्मिथ ने कहा, उसका संपूर्ण पुरोहित के नेव इस तरह के गाने या ईश्वर के पुत्रों के आनंद के हर्ष से पहले हुआ था, और वह सबसे ऊंची और पवित्र पुरोहित है, और वह ईश्वर के पुत्र के विस्थाप के अनुसार है. पुरोहित अधिकारी के रूप में हम ईश्वर के अभिकर्ता हैं. ईश्वर ने पवित्र संतान के बारे में 1831 में कैटलन गिरजाघर के एलनरो से कहा, इसलिए क्योंकि तुम अभी करता हो, तुम ईश्वर के कार्य के लिए हो, और जो भी तुम ईश्वर के इच्छा के अनुसार करो वो ईश्वर का मामला है. प्रधान हिंकली ने हमें ये बार याद दिलाया कि प्रचारक कार्य विशेषकर एक पुरोहित जिम्मेदारी है. ये महान सम्मान और जिम्मेदारी है कि प्रचारक कार्य के लिए ईश्वर की सेवा के लिए नियुक्त हो. इस सेवा के आनंद अंत आनंद मिलता है क्योंकि नए समय समय पर वो सिर्फ और निष्पक्ष होता है. मेरे मिशन में मेरे जीवन के मार्ग को बदल दिया. वो मेरा सबसे महान अनुभव था. मिशन की सेवा हमें तैयार करती है हमारी बाकी की जीवन और हमारे आनंद कार्य के लिए. मैं आशा करता हूं कि तुम ईश्वर के पुरुष बनोगे. धार्मिक कार्य से तुम ईश्वर के पुरुष रहोगे. तुम अपनी प्रोहिति और सम्मान और भक्ति करोगे जैसे देवदूत पॉल ने कहा है. धार्मिकता, धर्मपरायणता, विश्वास, प्यार, दयांगा, विनम्रता का पालन कीजिए. यह हमेशा आसान नहीं है कि धार्मिक योजना का पालन किया जाए और समाज और ईश्वर के कानूनों से प्राप्ति आज्ञाकारी रहा जाए. अंत में फिर भी नियमों का पालन करना उचित मार्ग है और सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए जिनका वादा ईश्वर ने कहा है। हम सभी अपने कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। वकील होने के मेरे अनुभव ने मुझे सिखलाया है कि अपराध का जो अपनाते हैं वो बूढ़े अपने पिता या माता या समाज के दोषी ठहराते हैं जब वो कार्य कर जाते हैं। फिर भी वो अपने खुशी है और कार्य करें और बूढ़े खुशी के स्वभाव की विपरीत दशा में होते हैं। उनके कुछ है, शैतान ने मुझे वो करने पर मजबूर किया है। हमारे पास अपने किए कार्य करने की स्वतंत्रता है। शैतान हमारे वो नहीं कर दे सकता है जो कार्य ये लिए नहीं चाहते हैं। जैसे किसी ने बार कहा है, युवा में हम कठिनाई जाते हैं, बूढ़े उम्र में कठिनाई हम में आती है। हमारे समाज के बैराव हुए बुरे अक्षरों में झूठ हमारे धर्म चला जाती है और ईश्वर की आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करेंगे। शैतान के बचावों के गंभीरता से ना लेने की बहुत खतरे हो जाते हैं। अपने जीवन में सभी दिनों के लिए हमारे पाप के सभी रूपों से सुरक्षित रहना है। तुम सभी जवान पुरुष जिनके पास प्रोहिति है और तुम्हारे कठिनाई और नम्रता के सम्मान करना। जब तुम गिरजाघर की सुंदर जवान औरतों से मिलते हो, तुम्हारे कर्तव्य है कि उनकी शारीरिक सुरक्षा और नित्य गुण से रक्षा करो। जो पुरोहित तुम्हारे पास है वो तुम्हारे नहीं जिम्मेदारी देती है कि गिरजा के ऊपर। तुम जानते हो कि तुम्हें ये संपत्ति उठ जाने को योग्यता नहीं चाहिए। तुम उस पवित्रता से भाग खोगे जो अगर तुम्हें सीमा के बाहर पाएगा। कैसे हम में से कुछ आशा कर सकते हैं कि हम समय अंतकाल की महान भूमिका में अनुभव करते हैं लिए अगर हमारे पास अंतम भीमंत्र की कोई शक्ति ना हो। मैं इस सीख सकता हूँ अपने रूट 60 वर्ष से अधिक स्वस्थ जीवन में। दोस्त और प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे जीवन को भरपूर करते हैं, पर ये संबंध अशक्त है। तुम्हारे माता पिता या जिंदा तुमसे कोई नहीं प्यारा है। तुम सवाल करते हो, वो क्या तुम्हें बतलाते हैं, पर तुम उनसे क्या प्यार तुम्हारे प्राप्त है और क्या तुम्हारे सवालों नहीं कर सकता। समय आएगा जब तुम जवान पुरुषों के पर एक पत्नी और बच्चे की परवार करोगे, जिम्मेदारी होगी तुम पर निर्भय रहेगा। जब तुम विवाह करोगे तो अपने पत्नी के कल्याण के लिए जिम्मेदार रहोगे और मैं अपने बच्चों के कल्याण के लिए तुमसे एक परिवार। विवाह और पवित्र अंत खुशहाली और आनंद ला सकते हैं। जैसे प्रधान जोसेफ स्मिथ ने कहा, ये परिवार जीवन है जिस पर गिरजाघर का संसार अधिकृत है और बनाया गया है। घर में महान सुस्ती और देवन साथियों को विवाह लिए पूरी तरह वचन रहे चाहिए। प्रधान डेविड मके ने कहा, एक बार कहा, जब कोई विवाह को अपने परिवार से ज्यादा मानता है वह आत्मिक कमजोरियों की दशा की ओर जाता है। तुम में से कुछ बड़े रहे हैं सफलतापूर्वक अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए। हम तुम पर गर्वीला हैं। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा कि उसने सोचा कि उसकी सफलता मिलती जब वे कहानियों से पत्र। उसने कहा कि एक तारीख से नकलता बना जाए। हम विकसता से योग में रहते हैं। जब मैं लड़का था तब कई लड़कों के पास मॉडल टी फोर्स थी। आधुनिक खिलाड़ियों के तुलना में वो कई लोग अपने गाड़ियों को मरम्मत कर सकते थे, वाल्व्स पॉलिश कर सकते, पिस्टन में रिंग्स डालते, नई ब्रेक्स बांध लगाते और बेलिंग वाया का इस्तेमाल करते। आज की गाड़ियों इतनी जल्दी है कि एक समय व्यक्ति बहुत कम जानता है उसके मरम्मत के बारे में। आज के मैकेनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं इंजन की समस्या के जानने के लिए। मैं इस उदाहरण का वर्णन कर रहा हूँ तुम जवान पुरुषों के लिए, ताकि तुम और शिक्षा प्राप्त करो ताकि नौकरी कर सको आगे। किसी भी तरह की कौशलता के लिए जरूरी है विषय ज्ञान। मुझे कौन पैसा तुम चुनोगे जीवन में अपने केस लिए, सिर्फ वो मानना चाहिए। कैसे तुम अपने परिवार का परोस करोगे, वो तुम्हारे निर्भय है। एक कौशलता प्राप्त करने एक अच्छा तरीका है बिल करना, और वो जीवन के संसारिक जीवन में मत फंसिए। तुम शायद डिकन्स के पात्र जैकब माली को याद कर सकते हो, जिसने विलाप किया अपनी नौकरी के विचार पर, जब वो चिल्ला उठा, व्यापार मानो जाति मेरा या व्यापार होना चाहिए। हम प्राप्त समझ मजबूती के लिए कुछ भूमिका निकल रहे। मैंने सीखा है कि हम मैंने इस जिसे पास प्रोहितों के सबसे उचित उपाय सफलता के लिए है। इसलिए पहले तुम ईश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब व्यवस्था भी तुम्हें मिल जाएगा। सफलता तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए तैयारी और कठिनाई परिश्रम की जरूरत है। सफलता पाने के लिए वास्तव में तुम्हें आसान तरीका नहीं है। हमें प्रत्येक करना पड़ने और स्वर्ग पिता के हम सभी को कोई पूरी तरह के किसी और के पास ठीक यही तोहफा है, योग्यता नहीं है जो हमें दिया गया है। हमें उन योग्यताओं और तोहफाओं को विकसित करना है चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब मैं बड़ा रहा था तो वहाँ हमारे पड़ोस में एक अच्छा जवान पुरुष था जो विद्वान नहीं था, पर अपने हाथों से सुंदर मेज बनाता था। उसे मुझे एक ही दिन में सेने में भर्ती कर दी। वो अपने हाथ तैयार करना नहीं सीखा सकता था, ताकि वो में सफल हो पर, और वो छोटी लकड़ियों के कहा था। जैसे प्रधान हॉवर्ड डब्ल्यू ने कहा, कुछ लोगों ने विचार है कि योग्यता सोचपुर नैतिक सेकता या मानता योग्यता पुरुष और संपत्ति नहीं है, पर उनके लिए अरक्षित है जो बड़े हैं। ये सच नहीं है। तुम जवान पुरुषों के भविष्य में महान वादा है। तुम उस ज्ञान को पाओ जिसे दुनिया पहले कभी नहीं जानती है। इस ज्ञान से तुम्हें मौका मिलेगा आधुनिक व्यापार योग्यता कृषि और प्रदेश को। तुम उनमें से होगे जो युद्ध भूमियों में जीवन के तरीके से लिए रक्षा करेंगे। तुम उनमें से रहोगे जो दुनिया में सुसमाचार से सिद्धार्थ का प्रचार करेगा। अब मेरे नाती पोतियों और सभी विशेष जवान पुरुष जिनका मेरी आवाज सुनो, विश्वास एवं धार्मिक में आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसा करोगे, ईश्वर तुम्हें मजबूती करेगा और तुम्हें विस्तृत करेगा, ताकि तुम महान चीजों से पूर्ति करेगा। मैं जीवन के पुरोहित और महान ज्ञानपूर्ण प्रभु की मान गवाही देता हूँ। मेरे जीवन में लंबे वसे में मैंने चिपनी सी खुशी नहीं की है। मैं एक भी दृष्टन याद नहीं कर सकता जिसे मेरे पेशा को छूट पहुंचाए और कि मेरे गिरजा में हो, जिसके द्वारा मैंने भूल या दोष खोया है। यीशु मसीह का नाम से आज भी गवाही तुम्हें देता हूँ, आमीन।
Brethren, we're assembled this evening.
आज शाम हमें प्रीस्टहुड के एक रूप में इकट्ठा हुए कॉन्फ्रेंस सेंटर में दुनिया भर में। मैं आभार हूँ आपसे आज बोलने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की प्रेरणा मेरे विचारों को आज निर्देशन देगी और मेरे शब्दों को प्रेरणा देगी। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने सोचा है कि मैं क्या आज क्या कहूँगा. मैंने सोचा है मैं उन आशीर्वादों के बारे में कहूँगा जो पवित्र प्रिस्टहुड के बारे की आशीर्वाद की है जिसे दुनिया को देते हैं. पॉपुलेशन 6.5 बिलियन लोगों की है. हम जानते हैं कि हम बहुत छोटा एक ग्रुप है. हमारे पास जो प्रिस्टहुड है जिसके अपोस्टल पीटर के अनुसार अ चोजन जनरेशन अ रॉयल प्रिस्टहुड. प्रॉफेट प्रेसिडेंट जोसेफ स्मिथ ने प्रिस्टहुड को बताया है कि भगवान के द्वारा वह शक्ति दी गई है मनुष्य को जिससे मनुष्य इस धरती पर आदमी के परिवार के निर्माण के लिए काम कर सके और जिससे आदमी भगवान की इच्छा को बोल सके जैसे स्वर्गदूत यहाँ को खुद बोल रहे हो और वो इस धरती पर कर सकें जो वो स्वर्ग में कर सकें. प्रेसिडेंट स्मिथ ने और किया ये प्रिस्टहुड पवित्र है और उसे लोगों द्वारा पवित्र रखा जाना चाहिए. मेरे भाइयों ये प्रिस्टहुड एक व्यापार है जिससे नहीं हमें खास आशीर्वाद आते हैं पर जिम्मेदारियां भी हैं. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने जीवन को एक लायक रूप से जिए. हम उस समय में रहते हैं कि हमें कई चीज़ें उस रास्तों में प्रलोभ खींच रही हैं जिससे हमारा नुकसान हो. इन रास्तों को से बचने के लिए हमें धैर्य और साहस की ज़रूरत है. साहस मदद में आता है. ये सत्य मुझे कई साल पहले पता चला. उस समय मैं बिशप था. एक जनरल सेशन जो स्टेक फ्रांसिस का उसे टेंपल स्क्वायर में असेंबली हॉल में सॉल्ट लेक सिटी में हुआ. हमारे स्टेक प्रेसिडेंट को रीऑर्गेनाइज होना था. एरोनिक प्रीस्टहुड बिशप के सदस्य और कई लोगों ने कॉन्फ्रेंस के लिए संगीत का प्रबंध किया. जैसे हमने पहला सिलेक्शन गाया प्रेसिडेंट जोसेफ फेलिक्स में जो हमारे कॉन्फ्रेंस के एक विजिट थे वो मंच पे आया. उन्होंने न्यू स्टेक प्रेसिडेंट की कुछ सस्टेनिंग के लिए नाम दिए. मैं जानता था कि दूसरे स्टेक प्रेसिडेंसियों को उनको अपने बुलावों के बारे में पता था. मुझे अपनी कॉलोनी के बारे में नहीं पता था पर जब उन्होंने मेरा नाम पढ़ा प्रेसिडेंट ने पूछा
and sustained as it was to be the second counselor in the
aur uske baad mein mujhe dusre counselor ka stake par ka counselor ka bulawa diya aur uske bare mein mujhe kuch bhi nahi pata tha. jaise maine taiyari karte hue aur is bulawe ka jawab dene ke liye taiyari kiya तो मैंने उस गाने को याद किया जिसे एरोनिक प्रीस्टहुड ने गाया था. वो वर्ड ऑफ विजडम के बारे में था और उसका टाइटल था हैव करेज माय बॉय टू से नो.
दैट डे
उस दिन मैंने अपने एक्सेप्टेंस की विषय को चुना हैव करेज माय बॉय टू से यस. साहस के बुलावा हम समय के पास में हर बार आता है. हमारे विश्वासों के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारियों को साहस से करना और हमारे प्रिस्टहुड का साहस से सम्मान करने का. हम जहाँ पर भी जाते हैं प्रिस्टहुड हमारे साथ जाता है. क्या हम सच में पवित्र जगह में खड़े हुए हैं? प्रेसिडेंट जे रूबिन क्लाउज जिसने कई सालों तक फर्स्ट प्रेसिडेंट में एक काउंसलर के रूप में काम किया था. प्रिस्टहुड एक कपड़ों की तरह नहीं है जिसे तुम निकाल कर छोड़ दो फिर वापस डालो. वो एक अनंत एंडाउमेंट है. उन्होंने वह किया. अगर हमें सच में वो विश्वास होता तो हम कभी भी प्रिस्टहुड को अलग नहीं रखेंगे और गॉड हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अगर कभी भी हम उसका मजाक बढ़ाएंगे हैं अगर हर बार हम थोड़ी सी रास्ते से दूर जाए जाएंगे तो हमें याद आएंगे कि मैं अपना प्रिस्टहुड वहाँ ले जा रहा हूँ क्या मैं उसे ले जाऊँ. इस प्रकार वो हमें रास्ते से नहीं लगाएगा और हम स्ट्रेट और नैरो पे रहेंगे. President Semper W. Kimmel ने कहा है, प्रीस्टहुड के पावर की कोई शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो तुम में आती हैं अगर तुम आत्मा के साथ में ढंग से नहीं रहे हो। प्रीस्टहुड के मेरे भाइयों, जो सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े हैं, जो तुम क्या तुम अपनी जीवन को भगवान के इच्छा अनुसार जी रहे हो, क्या तुम भगवान के प्रीस्टहुड के लायक हो? अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें वो निर्णय यहाँ करना है और अभी करना है, उस साहस को इकट्ठा करना है, और चाहे जो भी बदलाव लाने की जरूरत है तुम्हारे जीवन को वो बनाने के लिए जो उसे होना है। इस जीवन को पार करने के लिए हमें अनंत मेरनर ग्री जहोवा की मदद की जाएगी। अगर हम भगवान के काम पे हैं तो हमें भगवान की मदद मिलने की जरूरी है। ये मदद मुझे कई समय मदद आई। वर्ल्ड वॉर टू के आखिरी समय में मैं 18 साल हुआ, और एक एल्डर बाद मैं जब एक हफ्ते पहले जब मैं नेवी में गया, बिशप का एक सदस्य ट्रेन स्टेशन पर मुझे फेयरवेल देने के लिए खड़ा था। ट्रेन के टाइम पर उन्होंने मेरे हाथ में किताब रखी जिसका नाम है द मिशनरी हैंडबुक, जिसके ऊपर साल लिखा था 1944। मैंने हंसा और मैंने कहा, मैं नेवी में हूँ, एक मिशन के ऊपर नहीं हूँ। उन्होंने कहा, उसे ले जाओ, वो तुम्हारे काम में आएगी। और वो आई, बिल्कुल काम में। हमारे बेसिक ट्रेनिंग कंपनी कमांडर ने मुझे निर्देशन दिया कि हम अपनी गियर को एक छोटे से एक लार्ज सी बैग में कैसे डालें। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे चौकट्टा कोई चीज़ हो तो मैं तो उसे सबसे बैग के निचले हिस्से में रखना है, उसके बाद में उस प्रकार तुम्हारे कपड़े कड़क रहेंगे। मैंने पहले सोचा कि मैं उसे मोटे बक्के रेक्टेंगुलर चीज को कहाँ पाऊंगा। वो मिशनरी हैंडबुक उस तरह 12 हफ्तों के लिए काम आएंगे। क्रिसमस की छुट्टी के पहले हमारे ख्याल घर के ऊपर थे। बैरेक्स ठीक बहुत शांत पड़े थे। मेंबर ऑफ द चर्च जो मेरे पड़ोस वाले बंक में था, लीडर मेरिल ने, वो काफ़ी दर्द में था। तो मैंने पूछा, मेरिल क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, मैं बहुत ज़्यादा सिख हूँ, मैं बहुत सिख हूँ। मैंने उन्हें कहा कि तुम जाओ और थोड़ी दवाई लेके हैं, पर उन्हें पता था कि ऐसे करने से वो क्रिसमस पे घर नहीं जा पाएंगे। घंटे बढ़ते गए और उनका दर्द बढ़ता गया। फिर मैंने हार मान के कहा, उन्होंने हार मार के कहा, मॉनसन, क्या तुम एक एल्डर नहीं हो? मैंने कहा, वो सही था। जहाँ उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, मुझे एक आशीर्वाद दो, मुझे एकदम ये समझ में आया कि मैंने कभी भी आशीर्वाद नहीं आता है। मैंने कभी उसे देखा नहीं था, मैंने उसे पता नहीं था कैसे करता है। मैंने भगवान ने प्रार्थना करी कि मुझे मदद मिले। जवाब आया कि तुम सी बैग के नीचे इसलिए में देखो। 2 बजे रात के मैंने बैग को खाली किया और उसको फिर मैं नाइट लाइट में ले गया और मिशनरी हैंडबुक को पढ़ा, और इसमें ये पढ़ने की कोशिश करी कि एक आप बीमार आदमी को कैसे आशीर्वाद दो। 120 सेलर मेरे आसपास जो देख रहे थे, मैंने ब्लेसिंग आशीर्वाद देना चालू किया। मैं अपने सामान रखने से पहले मेरल की ओर देखा और वो एक बच्चे की तरह सो रहा था। अगली से मेरल ने कहा कि मॉनसून, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास प्रीस्ट है। मैं आभारी हूँ प्रीस्टों के लिए है। उस समय में, ताकि मुझे जिस समय मुझे प्रीस्टहुड के शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं. भाइयों, भगवान ने कहा है, कम फॉलो मी, आओ मेरे पीछे. जब उनके इस निमंत्रण को लेते हैं और उनके कदमों में चलते हैं, वो हमें रास्ता दिखाएगा. अप्रैल 2000 में मुझे एक दिशा दिखाई दी. मुझे रोसा सेल्स गिफोर्ड से एक फ़ोन कॉल मिला जिसे मैं नहीं जानता था. उन्होंने समझाया कि उनके माँ बाप कोस्टा रिका से कुछ महीनों के लिए आए हुए थे और एक हफ्ते पहले उनके फ़ोन कॉल से उनके पिता बर्नार्डो अगस्तो सेल्स को लिवर कैंसर की बीमारी बताई गई थी. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने बताया था कि उनके पिता को कुछ और दिन जिएंगे. उनके पिता के पास एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो मुझसे मिले मरने के पहले. मैंने उन्हें एक पता दिया और पूछा कि क्या वो मेरे घर में आए सॉल्ट लेक सिटी में, ताकि मैं उनके पिता से मिल सकूं, उनके घर जा सकूं, उनके पिता से मिल सकूं. मीटिंग और ऑब्लिगेशन की वजह से मैं ऑफिस से लेट निकला. घर जाने के बजाय मैं क्यों उनके ब्रदर सेलर्स के घर जाऊं उसी शाम. जब वो एड्रेस मेरे हाथ में आया तो मैंने उस घर को ढूंढने की कोशिश करी. हैवी ट्रैफिक में और जाती हुई रोशनी में मैं उस घर के सामने से निकल गया, हाँ, जहाँ घर की ओर रास्ता मुड़ना चाहता था, पर मैं कुछ भी देख नहीं सकता. मैं ब्लॉक के आसपास गया और वापस गया और फिर मैंने वापस देखा, फिर एक और बार किया, फिर भी मैंने कोई भी नहीं रोड को नहीं देखा. उसके बाद मुझे लगा क्या कि मुझे लगा कि अब मुझे अगर घर जाऊं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. मैंने कोशिश करी थी पर मैं पता नहीं ढूंढ पाया. पर मैंने उसकी बजाय एक शांत प्रार्थना मदद के लिए मांगी. प्रेरणा मिली कि मैं एरिया में दूसरी दृष्टि से जाना चाहिए. मैं थोड़ी जगह गया और मैंने गाड़ी पलटाई और मैं दूसरी सड़क की दूसरी तरफ रहता. इस तरफ जाते में ट्रैफिक बहुत कम था और जैसे मैं लोकेशन के पास में आया तो मैं उस रोशनी को देख सकता था, एक स्ट्रीट साइन को जो सड़क के ऊपर गिरी पड़ी हुई थी. और उसके बाद में मैं एक छोटी सी झाड़ी से ढके हुए रोड को ढूंढना जिससे अपार्टमेंट बिल्डिंग की जा सकती. जैसे मैं बिल्डिंग के पास में गया, एक छोटी लड़की एक सफ़ेद ड्रेस में ने मेरे ऊपर हाथ हिला रही थी. तब मैं जान गया कि मैं परिवार को पा लिया था. मैं उस घर के अंदर गया और उस कमरे में जहाँ बदस सालस लेटे हुए थे, उसके बिस्तर के आसपास तीन बेटियां और एक सन इन लॉ था और सिस्टर सेलस भी थी. पर सारे लोग सन इन लॉज के अलावा कोस्टा रिका थे. ब्रदर सेलर पेरेंट्स के जो चेहरे से आप देख सकते थे कितने बीमार थे. उनके माथे के ऊपर एक पानी का पट्टा लगा हुआ था. और वो जो पट्टा था वो थोड़ा फटा हुआ था, जिससे परिवार के पैसे की स्थिति को भी पता चला सकता था. कुछ बोलने के बाद ब्रदर सालस ने अपनी आंखें खोली और एक मुस्कुराहट से उन्होंने हंसे. मैंने उनसे कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ. उनकी आंखें आंसू से भर गईं और मेरी भी. मैंने पूछा कि वे एक आशीर्वाद को चाहेंगे. उनका जवाब पूरे परिवार के सदस्य था कि हाँ, वो सही होगा. पर उनके सामने प्रीस्टहुड नहीं था. मैंने खुद अपने आप एक प्रीस्टहुड ब्लेसिंग देने की शुरुआत करी. शब्द मेरे अंदर से आत्मा भगवान के आत्मा के निर्देशन से आने लगे. मैंने मसीह के शब्दों को जोड़ा जो डॉक्ट्रिन 84 वर्स 88 में लिखा गया, I will go before your face. I will be on your right hand, on your left, and my spirit shall be in your heart, and my angels round about you bear you up. उस आशीर्वाद के बाद मैंने कुछ शब्द दिए ताकि परिवार को थोड़ा ठीक लगे. मैंने धीरे से बात कर रहे हैं. میری وہ انگلش کو سمجھ سکے. اس کے بعد میں تھوڑی میری جو ٹوٹی پھوٹی اسپینش میں انہوں نے بتایا کہ میں ان سے پیار کرتا تھا کہ سورگی پتا انہیں آشیرواد دیں گے. میں نے پریوار کی بائبل کو مانگا اور پھر انہیں 3 John 4 کو بتایا ہے. آئی ہیو نو گریٹر جوائے دین ٹو ہیئر مائی چلڈرن واک ان ٹروتھ. میں نے ان کو کیا ہے, یہ تمہارے پتی اور پتا یاد رکھیں گے جیسے وہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. بردر سیلس کی جو اچھی بیوی تھی, انہیں اسکرپچرس کی دو ریفرنس کو لکھ دوں تاکہ وہ بعد میں اسے پڑھ سکیں, پر مجھے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے سسٹر سیلس کے کو بولا کہ وہ اپنے پرس میں سے ایک تھوڑا سا ایک سلپ پیپر دیں. جیسے میں نے وہ پیپر کی سلپ لی, میں نے ایک وہ ٹائڈنگ ریسیو تھی. میرے دل کو چھوا گیا جیسے میں نے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اتنی غریبی ہونے کے باوجود وہ اپنی ٹائڈنگ دینے میں وشواسی تھے. جیسے میں نے ان کو ودا کیا, میں اپنی گاڑی کے پاس گیا اور میں نے اس آتما کے بارے میں سوچا جیسے میں نے گاڑی گھر چلائے. میں نے اسے کئی بار محسوس کیا ہے. وہ ہے جو آبھار کی بھاونا جو سورگیہ پتا نے واپس ایک اور ویکتی کی پرارتھنا میرے دوارا جواب دیا ہے. میرے بھائیو, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پریسٹہڈ بھگوان کا پریسٹہڈ وہ ایک پوتر اپہار ہے جسے ہمیں اور دوسروں کو سورگ کے آشیرواد ملتے ہیں. چاہے ہم کہاں پہ بھی ہوں, کیسے بھی ہوں, اس پریسٹہڈ کو ہمیں رکشا دینا ہے اور سمان کرنا ہے. جب بھی ہم بھگوان کے کہاں پہ ہیں کہ ہم بھگوان کی مدد کریں. آدمیوں کی آتما کے لیے ایک لڑائی کی جا رہی ہے, تمہاری میری. وہ بنا رکاوٹ کے چلتے جا رہے ہیں. وہ بھگوان کلیئر کال کی طرف تو میرے پاس آتی ہیں. ویئر فور ناٹ ایوری مین لرنز ڈیوٹی اینڈ ایکٹ ان دا آفس ان وچ ہی از اپوائنٹڈ ان آل ڈیلیجنس. ہم سب کے پاس ایسا کرنے کے لیے ساہس ہو. میں پرارتھنا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں.
Jesus Christ.
Amen.
We remind you that the
ہم یاد دلاتے ہیں کہ ٹیبرنیکل کوائر کا پرسارن 9:30 ماؤنٹن ڈے لائٹ ٹائم کل صبح ہوگا. رویوار کی صبح کا سیشن پھر اس کے بعد ہوگا. ہم دھنیواد دیتے ہیں برگھم ینگ یونیورسٹی کے پرسٹیج کوائر کو آج شام ایک سندر سنگیت کے لیے. ہمارے آخری وقت اس سیشن ہوں گے پریزیڈنٹ گورڈن بی ہنکلی, ہمارے پیارے پروفٹ. پریزیڈنٹ ہنکلی کے شبدوں کے بعد کوائر پھر گائے گا آئی لو دا لارڈ. پرارتھنا پھر 70 کے ایلڈر پال بی جانسن دوارا کری جائیں گی. پریزیڈنٹ ہنکلی.
My dear brethren of the priest,
میرے پیارے پریسٹ کے بھائیو, مجھے پرنا ملتی ہے آپ کی 21,000 چیئروں کے یہاں کانفرنس سینٹر میں دیکھ کر, اور یہ جہاں کر کی لاکھوں دنیا بھر اکٹھا ہوئے ہیں. میں دکھی ہوتا ہوں کہ میں اتنے بڑی سمے اتنے بوڑھا ہوں. آپ کے پتا ہے کہ مجھے گرجا کے پریزیڈنٹ کے روپ کا بلاوا 12 پہلے ملا, 12th March 1995 پر. ایلڈر بیلر نے 12 سالوں کے بارے میں कुछ आंकड़ों को इकट्ठा किया है. 387,750 मिशनरी ने मिशन चालू किया है, जो पूरे समय के 40% मिशनरी है. जिसका मतलब 40% गिरजे के 177 सालों के इतिहास में सबसे हाल के 12 साल. 3,400,000 कॉन्वर्ट को बैप्टाइज किया गया है, जो गिरजे की 1/4 सदस्यता है. गिरजे के कुल मिशन 303 से 344 हो गई है, और तीन और जोड़ने वाले हैं. रिटेंशन, जिसे सैक्रमेंट मीटिंग में उपस्थिति, प्रस्तुत ऑर्डिनेंसेस और टाइथिंग से नाप जाता है, वो बढ़ रहा है. यह सब बहुत बढ़िया हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि और मेहनत से ये हाल का गुजारा समय बेहतरीन आने वाले समय का सिर्फ एक पहला पाना बन सकता है. हम सबको अपने कंधों को पाने पर लगाकर धक्का लगाना है और पूरे दिल से काम करना है. उसके लिए मेहनत करना है, तो धक्का लगाओ. अब मैं एक और विषय के बारे में बोलूंगा. मैंने कुछ साल पहले इस विषय के बारे में बोला. मैं उसे दोहराऊंगा ताकि किसी की याद ताजी होगी और दूसरों उसे पहले बार सुनेंगे. वो प्रेसिडेंट जोसेफ एफ स्मिथ के बारे का है, जिन्होंने गिरजे को 1901 से 1918 से 17 साल नेतृत्व दिया. जोसेफ एफ स्मिथ हायरम स्मिथ के बेटे थे, जो प्रॉफिट के भाई थे, और उनके साथ कार्थेज में शहीद हुए. जोसेफ एफ फार वेस्ट मिसौरी में नवंबर 13, 1838 को पैदा हुआ. उन्होंने मिसौरी के एक बच्चे के रूप में छोड़ा. 6 साल के उम्र में उन्होंने नावू में अपनी माँ के घर की खिड़की पर ठकठका सुनी. वो एक कातर से आया हुआ आदमी था, जिसने सिस्टर स्मिथ को बताया कि उनके पति को उस दोपहर मार दिया गया था. जब वो 9 वर्ष की थी, वो 2 बैलों के साथ अपनी माँ सहित इस वैली में आए. 15 साल की उम्र में उन्होंने हवाई जाने का मिशन मिला. वो सैन फ्रांसिस्को गए और एक शिंगल मिल में काम पैसे बचाकर वो हवाई गए. हवाई उस समय एक यात्रियों के लिए स्थान नहीं था. वहाँ सिर्फ हवाईयन लोग थे, जो गरीब थे पर दयालु. उन्होंने उनकी भाषा सीखी और उन्हें प्यार करना सीखा. जब वो सेवा कर रहे थे, तब उन्हें एक सपना आया. मैं उनके लेख में से पढ़ता हूँ. मैं मिशन पर बहुत गरीब था. मैं लगभग नंगा था, बिना दोस्त के, सिर्फ वहाँ के गरीब लोगों की दोस्ती के. मुझे इतना खराब लगा गरीबी और पढ़ाई की कमी से कि किसी को आंख मिला कर नहीं देख सकता. एक रात मुझे सपना आया कि मैं एक यात्रा पर था और मुझे जल्दी करनी थी. क्योंकि मैं देर हो सकता था। मैं जितने जल्दी चल सका चला और सिर्फ एक रुमाल में एक छोटे बंडल को ले। मुझे पता नहीं था कि वो क्या था, पर जितनी जल्दी जा सकता था जा रहा था। पर अंत में एक बढ़िया मेंशन आई और मुझे लगा कि वह मेरी मंजिल थी। जैसे मैं उसके पास गया, मैंने एक नोटिस को पढ़ा, BATH, नहाओ। मैं जल्दी से नहाया और साफ हुआ। मैंने उस छोटे बंडल को खोला जिसमें एक जोड़ी सफेद कपड़े थे, जिसे मैंने कुछ समय से नहीं देखा था, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं हाल में था वो सफाई के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर मेरा कपड़ा साफ था और मैंने उन्हें पहना। फिर मैं एक बड़े दरवाजे के ओर गया। मैंने ठकठकाया और वहां प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा, देख कहा, जोसेफ तुम देरी से आए हो, पर मैंने विश्वास से जवाब दिया, हाँ, पर मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींचा, फिर दरवाजा बंद किया। मैंने उनका हाथ किसी के भी हाथ की तरह महसूस किया। मैं उनको जानता था और जब मैंने अपने पिता ब्रिगम यंग, हीबसी किम्बल, विलर्ड रिचर्ड को देखा और दूसरे अच्छे लोगों, तब मुझे लगा कि वो इस वैली के ऊपर थे और उस मंच पर वो सब लोग थे जिन्हें मैं जानता था। मेरी माँ वहाँ थी, घोड़ी में एक बच्चे के साथ, और कई लोग थे जो वहाँ बैठे थे, जो चुने हुए लगते थे, जो निर्वाण पाई लग रहे थे। जब मुझे ये सपना आया, मैं हवाई के पहाड़ों में एक खटिया के ऊपर अकेला था। पर इस विजन में जब मैंने अपने हाथ को प्रॉफेट से मिलाया, तब मैंने उनके चेहरे पर एक मुस्कुरान को देखा। जब उस सुबह उठा तो मैं एक आदमी बन गया था। उसके बाद मुझे इस जीवन में कोई डर नहीं था। मैं किसी भी आदमी, औरत या बच्चों को आंखों में देख सकता था। अपनी आत्मा में अपनी आप को एक आदमी समझ। उस विजन और गवाही जिसे मैंने उस समय पाया, उसने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। अगर मैं भगवान के सामने साफ हूँ या अगर कुछ भी अच्छा हूँ, उसने मुझे हर समस्या में मदद की। उस सपने के अर्थ उस डांट में है जिसे जोसेफ स्मिथ ने जोसेफ एफ स्मिथ को लगाई, जिसमें उन्होंने कहा, जोसेफ तुम देर से आए हो। जोसेफ एफ ने कहा, पर मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ। उस सपने की वजह से वो बालक आदमी बना। उसके माँ मैं साफ हूँ बोलने से उसे किसी भी समस्या का सामना करने का भरोसा दिया। उसने साफ दिल की शक्ति को पाया जो प्रॉफिट जोसेफ के दांत से आई, उसे प्रॉफेटिक सपने में इस सभा के हर व्यक्ति के लिए कुछ है। एक पुरानी कहावत है, सफाई भगवान की सेवा का पास है। प्रॉफेट आइज़ाया ने कहा है, वॉश यू, मेक यू क्लीन, पुट यू अवे द इविल ऑफ योर डूइंग्स फ्रॉम बिफोर माइन आइज, सीज टू डू इविल, लर्न टू डू वेल, कम नाउ एंड लेट अस रीजन टुगेदर, सेड द लॉर्ड, थ्रू योर सिंस be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. नए रेवलेशन में भगवान ने कहा है, Be ye clean that bear the vessels of the Lord. इस दुनिया में जहां बहुत गंदगी है, अपने पहनाव, सोच और भाषा को साफ रखो। तुम सबको अपनी भाषा साफ रखनी है। आजकल इतनी गंदी भाषा बोली जाती है। गंदी भाषा इस्तेमाल करना दिखाता है कि तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत कम है। जब यहोवा ने पत्थर के टैबलेट पर लिखा, उन्होंने इसराइल को, इसराइल के बच्चे से कहा, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. The Lord has reinforced in words of modern revelation. Remember, that which cometh from above is sacred and must be spoken with care and by constraint of the Spirit. Be clean in thought, said the Lord. Let all things be done in cleanliness before me. सोच में साफ रहो, भगवान ने कहा है। एक गंदा दिमाग गंदी भाषा को इस्तेमाल करता है। एक साफ दिमाग उस भाषा को इस्तेमाल करता है जो दिल को खुशी लाती है। अपने शरीर, कपड़ों और व्यवहार को साफ रखो। टैटू में मत लगाओ। अगर तुम वैसा करोगे तो एक दिन तुम पछताओगे। सिर्फ एक दर्द भरा प्रोसीजर टैटू को निकाल सकता है। साफ सुथरे रहो। गंदे कपड़े गंदे व्यवहार को लाता है। तुम कुछ भी पहन सकते हो, पर उसे साफ सुथरा होना चाहिए। जोसेफ एफ स्मिथ के सपनों को याद करो, जैसे वो मेंशन की ओर जा रहे थे। उनके पास एक छोटा बंडल था। नहाने के बाद जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें साफ कपड़े थे। जब भी तुम सैक्रमेंट को पास करो, तुम हमेशा अच्छे देखो, खुद को साफ रखो। तो भाइयों, मैं आगे बोलता हूँ। मैं इंटरनेट के बारे में बोलूँगा और उसके इस्तेमाल की वजह से गंदे ख्याल आते हैं। और तुम्हारे प्रस्तुत की पुरुष होने की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम उसके चुने हुए सेवक हो और तुम्हें कुछ पवित्र करने के लिए ऑर्डेन किया गया है। तुम इस दुनिया में रह कर उसकी तरह नहीं हो सकते हो। तुम उसके ऊपर उठाना है। मेरे प्यारे भाइयों, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम लड़कों को मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करो। जब तुम शादी करोगे, परिवार का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे सामने कई मौके हैं और पढ़ाई वो चाबी है जिससे वो दरवाजा खुलेंगे। वो उस मेंशन का दरवाजा खोलेगा जिसके बारे में जोसेफ स्मिथ ने सपना देखा जब वो हवाई में थे। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे प्यारे भाइयों, भगवान से प्रार्थना से बोलो, उन्हें जानो, वो सर्व शक्तिमान है जिनके पास मदद करने की शक्ति है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वैसे हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Straight across land, I Our Father in heaven.
स्वर्ग में हमारे पिता, हम आपके सामने हमारा सर झुकाते हैं उस आभार के लिए जिसमें उसके लिए जिसके इस प्रीस्टहुड के इकट्ठा होने में हम भाग ले सकते हैं. हम इतने आभारी हैं. दुनिया के इतिहास में इतने महत्वपूर्ण समय में रहने के लिए धन्यवाद देते हैं. जब प्रीस्टहुड इस दुनिया पे हैं, प्रॉफिट और अपोस्टल के लिए धन्यवाद देते हैं. उन संदेशों के लिए धन्यवाद जिन्हें आज बताया गया है. हम आशा करते हैं कि आप हमारी आत्मा से हमें आशीर्वाद देंगे और वो संदेश हमारे साथ में रह सके हैं ताकि हम साफ हो सकें और कि हमारे अब आपके आसपास आपकी ओपन रह सकें. हम इस मौके के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिस हमने प्रेसिडेंट कोर्ट में इंग्लिश से सुना है, उनके काउंसलर से दूसरों से सुना है. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में होंगे और हमें शक्ति देंगे. यीशु मसीह के नाम में आमीन.